तीन महीने बीत चुके थे। वक्त ने हवेली की दीवारों पर जैसे एक पतली पारदर्शी परत जमा दी थी। ऊपर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखता था, वही ऊंची छतें, वही लंबे बरामदे, वही गूंजती सीढ़ियां। लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। आज हवेली फिर से सज रही थी, होली थी। आंगन में रंगों के बड़े बड़े पीतल के थाल सजे थे, गार्डन में गुलाल की कटोरियां करीने से रखी थीं, चांदी की पिचकारियां, गुलाब की पंखुड़ियों से भरे टब, रंगों से सजी मेजें, हर तरफ उत्सव का शोर था। नौकर भागते फिर रहे थे, कोई मिठाई सजा रहा था, कोई रंग घोल रहा था, कोई मेहमानों की सूची देख रहा था। और इस सब के बीच खड़ी थी अदिति, हल्की नीली जॉर्जेट साड़ी में। पतली स्ट्रैप वाला ब्लाउज उसकी कमर और कंधों की नज़ाकत को उभार रहा था। बाल खुले थे, लेकिन यूं ही नहीं, हल्के वेव्स में सेट, जैसे हर लट सोच समझकर छोड़ी गई हो। कानों में छोटे इयररिंग, हाथों में मोटे कंगन जो रत्ना देवी ने खुद उसे दिए थे। आज वो सच में इस घर की पोता बहू लग रही थी, लेकिन चेहरे की सतह के नीचे एक हल्की बेचैनी तैर रही थी। तभी मधु की आवाज आई, छोटी ठाकुराइन। अदिति मुड़ी। खाने की लिस्ट क्या बनाना है? बड़ी ठाकुराइन ने कहा था आपसे पूछ लूं। अदिति ठिठक गई, उसे याद नहीं था। एक पल की चुप्पी, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं विशाल को भेजती हूँ, वही लिस्ट लिखवा कर लाया था बड़ी दादी से, उसे याद होगा। मधु चली गई, अदिति विशाल के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन सामने से आर्यन आ गया, सफ़ेद कुर्ते में। कपड़ा बेहद सादा था, लेकिन उसकी फॉल और फिटिंग बता रही थी ये साधारण नहीं था। बाल पीछे सलीके से सेट थे, जैसे हर स्ट्रैंड को जगह पर रहने का आदेश दिया गया हो। चेहरा शांत, लेकिन आंखें नहीं। दोनों रुक गए। तीन महीने पहले का सब कुछ जैसे उसी पल में लौट आया। आर्यन की आंखों में अब भी वही ठंडा जमा हुआ गुस्सा था। अदिति कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। आर्यन बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसकी चाल सीधी, नियंत्रित, लेकिन भीतर दबे हुए तूफान की तरह भारी। उसके जाते ही अदिति ने पीछे मुड़कर धीमे से कहा, जानती हूं तुम आज तक नाराज हो। उस रोज जो हुआ शायद गलत था, मेरी इनसिक्योरिटी की वजह से शामली चली गई। उसने गहरी सांस ली, लेकिन आज मैं तुम्हें मनाकर ही रहूंगी। आज होली है, सबसे पहले मैं ही तुम्हें रंग लगाऊंगी। उधर हॉल में रत्ना देवी और सुषमा देवी बैठी थीं, लेकिन उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे किसी का इंतजार हो। तभी रम्या अंदर आई, सफेद लहंगा चोली में, मासूम, लेकिन आंखों में अब पहले वाली बचकानी चमक नहीं थी। नानी, आप मामा जी को ढूंढ रही हैं ना? वो तो ऑफिस के लिए निकल गए। सुषमा देवी चौंकी, क्या हमारा बच्चा होली के दिन भी ऑफिस चला गया? रम्या ने धीरे से कहा, अचानक कोई जरूरी काम आ गया था। रत्ना देवी की आवाज धीमी थी, अब तो मेरे बेटे का वक्त बस काम के लिए ही है, बाकी सब वो भूल गया है। उधर सड़क पर एक कार तेजी से जा रही थी, अचानक झटका लगा, गाड़ी रुक गई। अंदर बैठे आदमी ने भौहें से कोड़ी, वो था विश्वनाथ। तीन महीने पहले वाला विश्वनाथ नहीं, आज उसने सफेद कोट पैंट पहना था, लेकिन ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये एक कवच था। कोट की कटिंग बिल्कुल शार्प थी, शोल्डर पैड हल्के लेकिन प्रभावशाली, जैसे वो अपने कंधों पर दुनिया का भार उठाए हुए हो। अंदर हल्की ऑफ वाइट शर्ट, कॉलर पूरी तरह सीधा, टाई नहीं लेकिन ऊपर का बटन बंद। पैंट की क्रीज इतनी साफ थी कि सीधी रेखा जैसी लग रही थी। जूते काले, चमकते हुए। बाल, पहले वो बालों को हल्का खुला रखता था, आज सख्ती से पीछे कंघी किए हुए, एक भी लट बिखरी नहीं, जैसे उसने तय कर लिया हो अब कुछ भी ढीला नहीं छोड़ा जाएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल चुकी थी, पहले वो बैठते समय थोड़ा ढीला रहता था, आज पीठ पूरी तरह सीधी, जबड़ा कसा हुआ, उंगलियां घुटनों पर टिकी, स्थिर, नियंत्रित। क्या हुआ? उसने पूछा। ड्राइवर बोला, ठाकुर साहब लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। विश्वनाथ धीरे से उतरा, उतरते समय भी उसकी हर हरकत नपी तुली थी। दरवाजा बंद करते वक्त उसने जरा भी आवाज नहीं होने दी, जैसे शोर से उसे नफरत हो गई हो। तभी एक रंगों में सना बच्चा उससे टकरा गया, गुलाबी और हरे रंग के छींटे उसकी सफेद पैंट पर पड़ गए। वो पलटा, उसकी गर्दन की मांसपेशियां तन गईं। ये क्या किया तुमने? बच्चा डर गया। मां दौड़ती हुई आई, सॉरी साहब, बच्चा है। विश्वनाथ ने पहले अपने कपड़ों को देखा, फिर बच्चे को। उसकी आंखों में चिढ़ थी, लेकिन बच्चा हंस रहा था, बेफिक्र बेखौफ। उसकी हंसी जैसे कहीं दूर से आती हुई आवाज हो। विश्वनाथ की उंगलियां थोड़ी ढीली पड़ी, जबड़ा हल्का सा ढीला हुआ। उसने अपने बिल्कुल बेदाग सफेद कपड़ों को देखा और उन पर पड़े रंग को। माँ फिर बोली, माफ कर दीजिए। इस बार उसकी आवाज धीमी थी। विश्वनाथ की नजर अब भी अपने सफेद पैंट पर पड़े गुलाबी दाग पर टिकी थी। उसने धीरे से कहा, माफी? माँ ने सिर झुका लिया। जी बच्चा है, गलती हो गई। एक पल के लिए लगा जैसे वो चुप रह जाएगा, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आवाज ठंडी हो गई। बच्चे संभाले नहीं जाते तो बाहर क्यों लाती हैं? माँ ने चौंक कर उसकी ओर देखा। देखिए मेरे कपड़े, उसने पैंट की तरफ इशारा किया, ये कोई गली का रंग नहीं है और ना ही ये कोई खेल का मैदान है। बच्चा अब भी माँ का हाथ पकड़े खड़ा था, डरा हुआ लेकिन समझ नहीं पा रहा था। माँ कुछ कहना चाहती थी। साहब होली है बच्चे, तभी पीछे से एक और कार आकर रुकी। दरवाजे खुले, दो आदमी उतरे, काले कपड़े, कानों में वायरलेस और हाथ कोट के अंदर। बंदूकें छिपी थीं लेकिन साफ दिख रहा था कि वे खाली हाथ नहीं थे। वे सीधे विश्वनाथ की तरफ बढ़े, सतर्क, आंखें चारों तरफ घूमती हुई। पिछले दो महीनों में दो बार उस पर जानलेवा हमला हो चुका था और रत्ना देवी के सख्त आदेश पर अब वो अकेला नहीं चलता था। विश्वनाथ ने हल्की सी नजर उनकी तरफ डाली, फिर उसी माँ बेटे की ओर देखा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े। उनकी मौजूदगी ही काफी थी। मैडम हटिए यहां से, उनमें से एक ने सख्त आवाज में कहा। माँ घबरा गई, उसने बच्चे को पकड़कर तुरंत पीछे हटना ही बेहतर समझा। कुछ ही सेकंड में भी भीड़ में गुम हो गए। विश्वनाथ ने एक बार फिर अपने कपड़ों को देखा, फिर बिना कुछ कहे वापस कार में बैठ गया। दरवाजा बंद, चेहरा फिर वही सख्त नियंत्रित, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। कार आगे बढ़ गई सीधे ऑफिस की ओर।